arparadio.com की प्रस्तुति भारतीय इतिहास, वाचक स्वर कशिश। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास अंग्रेजी शासन ने किया। भारत के इतिहास में इस आंदोलन के पश्चात नए युग की शुरुआत हुई। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन से जनता को एहसास हुआ कि देश की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियां देश के लोगों को एक दूसरे के समीप ला रही हैं। वे यह भी जानते थे कि लोगों को जागरूक करना होगा, उनमें राजनीतिक चेतना पैदा करनी पड़ेगी, तभी भारतीय राष्ट्र का लक्ष्य पाया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि लोगों में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया जाए। आप यह तो जानते ही हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मूलतः विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध एक संघर्ष था। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से उत्पन्न परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता दी। वे परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार थीं। पहला, लोगों में जातीय घृणा, सामाजिक कुरीतियों एवं असमानता को दूर करने हेतु प्रयास। दूसरा, समूचे देश का राजनीतिक रूप से एकीकरण हुआ। तीसरा, डाक तथा संचार व्यवस्था प्रारंभ करना। चौथा, अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार करना। और पांचवा, अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण आर्थिक नीति और शोषण के कारण भी देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रीय एकता की भावना, देश प्रेम, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक परंपराओं पर अभिमान की भावना को सामूहिक रूप से राष्ट्रवाद कहा जाता है। आपने यह पढ़ा है कि 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। अंग्रेज व्यापारी विश्व भर के कई देशों में अपना माल बेचते थे। उन्हें अपने कारखानों के लिए सस्ते कच्चे माल तथा तैयार माल के लिए बाजार चाहिए था। इसलिए भारत की कृषि, उद्योग, व्यापार आदि की नीति अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही बनाई गई। अतः उन्होंने भारत का हर तरह से आर्थिक शोषण किया। इस नीति का हमारे देश के नेताओं ने डटकर विरोध किया। इसी विरोध की भावना से उत्पन्न विचार को आर्थिक राष्ट्रवाद भी कहा गया। भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य एवं दुनिया के अन्य भागों की घटनाओं के बारे में जानकारी मिली, इससे उनमें राजनीतिक जागरूकता आई। अब भारतीय समझने लगे कि भारत के पिछड़ेपन के लिए ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां ही जिम्मेदार हैं, जिनके कारण किसान, शिल्पकार और कारीगर बर्बाद हो गए। उस समय से भारतीय समाज में शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिनमें वकील, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी आदि शामिल थे। यह समाज आधुनिक शिक्षा से प्रभावित और जागरूक था। इसने संवैधानिकता, लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों को आत्मसात किया और उदार लोकतांत्रिक विचारों को स्वीकार भी किया। ब्रिटिश शासकों की नस्लवाद की भावना तथा प्रशासन में भारतीयों को न्यूनतम वेतन दिए जाने से उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ। उन्होंने जातीय भेदभाव के विरुद्ध भारतीयों में स्वाभिमान की भावना जगाई। इससे उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। भारतीयों की राजनीतिक सभाएं प्रारंभ में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास जैसे प्रांतीय नगरों में हुई। 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई। मुंबई एसोसिएशन तथा इसी वर्ष मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किया गया। इन संगठनों की प्रमुख मांगें थीं सरकार में भारतीयों की भागीदारी, करों में कमी की मांग तथा भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना। इन संगठनों में प्रायः शिक्षित तथा उच्च वर्ग के लोग थे। बाद में ऐसे कई संगठन बने जिनमें जन सामान्य के लोग भी सदस्य बने। ऐसे संगठनों में 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, 1884 में मद्रास महाजन सभा और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन प्रमुख थे। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के कुछ संगठनों के विकास में राजनीतिक जागृति दिखाई पड़ने लगी थी। ये नए संगठन पहले की अपेक्षा अधिक प्रखर थे। ये अंग्रेजों के भेदभाव एवं शोषण के विरोध में सभाएं करते थे। इनकी मांगे संपूर्ण भारत के लिए होती थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1853 में कलकत्ता में आयोजित इंडियन एसोसिएशन की बैठक में देश के सभी भागों के लोगों को आमंत्रित किया। यह प्रथम अखिल भारतीय प्रयास था। कालांतर में एक अन्य अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 सितंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में आरंभ हुआ। देश के विभिन्न भागों से 72 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। व्योमेश चंद्र बैनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उन दिनों इन संगठनों के मुख्य उद्देश्य थे, पहला, भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को संगठित करना, दूसरा, धर्म जाति आदि के भेद से परे एकता की भावना उत्पन्न करना, तीसरा, एक दूसरे की समस्याओं को जानना, चौथा, राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक उपायों पर विचार विमर्श करना, पांचवा, स्वतंत्रता समानता तथा स्वराज्य में आस्था व्यक्त करना। 1876 में भैरमगढ़ बस्तर में विद्रोह हुआ था। कांग्रेस सम्मेलनों में हो रही चर्चाओं से सरकारी अधिकारी चिंतित होने लगे, क्योंकि शासन के बारे में जो कुछ कहा जा रहा था वह सच था। सरकार इसका खंडन भी नहीं कर सकती थी। कांग्रेस को लोकप्रिय न होने देने तथा भारतीयों की सदस्यता को रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली थी। उन दिनों ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। कांग्रेस के प्रारंभिक नेता नरम विचारों वाले थे। उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किए बिना देश की राजनीतिक आर्थिक प्रगति का प्रयास किया। अपनी मांगों को शासन के समक्ष रखकर देश की समस्याओं का हल निकालने का प्रयत्न किया। ब्रिटिश शासन ने अधिवेशनों में रुकावट पैदा करना शुरू कर दिया। इन सब विरोधों का सामना करते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस अपना कार्य सुचारू रूप से करती रही। देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में युवा वर्ग राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने लगे। महिलाएं भी अधिवेशनों में भाग लेने लगी। छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रभक्त युवकों की कमी नहीं थी। यहाँ के जागरूक नवयुवकों ने जन जन में देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। इनमें पंडित माधवराव सप्रे का नाम प्रमुख है। उन्होंने 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र नामक समाचार पत्र तथा 1906 में हिंदी केसरी के नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र निकालकर लोगों में देश प्रेम की भावना को विकास किया। स्वराज्य के लिए संघर्ष, आंदोलनकारी दलों का निर्माण एवं प्रवृत्तियां। आप यह जानते हैं कि कांग्रेस ने प्रतिवर्ष अधिवेशन करके प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की। महिलाओं की सहभागिता से भी सुधारात्मक आंदोलन शुरू किया। वे प्रार्थना पत्रों निवेदनों के द्वारा अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। सरकार मांगे पूरी करेगी, ऐसा उनका विश्वास था। अंग्रेज सरकार ने उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को कमजोर करने का प्रयास किया। तत्कालीन वायसराय कर्जन ने उस समय देश के सबसे बड़े बंगाल प्रांत का अक्टूबर 1905 में विभाजन कर दिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से बंगाल भारत का बड़ा प्रांत था। इसमें बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भी समावेश था। अंग्रेजों ने इस विभाजन को प्रशासनिक सुविधा बताया, किंतु उनका उद्देश्य राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना था। बंगाल प्रांत के विभाजन के पीछे प्रशासनिक सुविधा एक कारण हो सकता है, किंतु वायसराय कर्जन का वास्तविक उद्देश्य हिंदुओं एवं मुसलमानों में फूट डालकर राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को कमजोर बनाना था। नवनिर्मित पूर्वी बंगाल में मुसलमान बहुसंख्यक थे और कर्जन की इस नीति का मुख्य उद्देश्य था कि मुस्लिम बहुल प्रांत का निर्माण करना तथा मुसलमानों को ब्रिटिश शासन का समर्थक बनाना। बंगाल विभाजन से जनमत अत्यंत उग्र हो गया। लोगों ने उस दिन शोक दिवस मनाया, ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया, स्वदेशी माल को खरीदने की शपथ ली, वंदे मातरम और स्वदेशी का नारा लगाया गया। स्वदेशी अर्थात अपने देश के लोगों द्वारा बनाई गई चीज़ों का ही उपयोग करना। विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय भावना जागृत करने वाली शिक्षण संस्थाओं अर्थात राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। अब बंग भंग विरोधी आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। बंगाल विभाजन युक्तिसंगत नहीं था, इसलिए अंग्रेज शासकों को 1911 में इसे रद्द करना पड़ा। यह घटना राष्ट्रवादियों के लिए बहुत बड़ी विजय थी। कांग्रेस सतत क्रियाशील रही। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा तथा विदेशी बहिष्कार के 4 सूत्रीय कार्यक्रम को बहुमत से स्वीकार किया। प्रारंभ में कांग्रेस में नरम विचारधारा वाले सदस्यों की बहुतायत थी। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो गई, जिसे नरम दल एवं गरम दल के नाम से जाना जाता है। नरम दल के नेताओं को विश्वास था कि भारतीयों की मांगों पर न्यायोचित विचार करने के लिए ब्रिटिश शासकों को अनुनय विनय करके मनाया जा सकता है। इसके प्रमुख नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि। 1905 में नरम विचारधारा वाले नेताओं के स्थान पर गर्म विचारधारा अर्थात उग्र राष्ट्रवादी नेताओं का महत्व बढ़ने लगा। गरम दल। गरम दल के नेताओं का मत था कि सरकार से केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। वे अंग्रेजों की सत्ता को भारत से हर तरह से उखाड़ फेंकना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार की सद्भावना में इन नेताओं को कोई आस्था नहीं थी। उन्होंने जनता में आत्मबल एवं देश प्रेम की भावना जगाई और देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने को कहा। ये नेता थे लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। 1910 में अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध बस्तर में भूमकाल विद्रोह हुआ था। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में नरम एवं गरम दल के नेताओं का उद्देश्य एक ही था, किंतु इनके कार्य करने के तरीके अलग अलग थे। इनके कार्यों से देश की जनता में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे का नारा देकर जनता में देश प्रेम की भावना भर दी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित गीत वंदे मातरम ने भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति प्रेम और श्रद्धा की भावना जगाई। लोकमान्य तिलक ने केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों के द्वारा राष्ट्रवादियों को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने जनता में राजनीतिक जागरण के लिए लोकप्रिय उत्सवों जैसे गणेश उत्सव एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए अनेक आंदोलन चलाए। इसी समय छत्तीसगढ़ के राज्य में पंडित सुंदरलाल शर्मा और पंडित नारायण राव मेघावाले ने राष्ट्रीय खादी आश्रम की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए कम मूल्य में खादी बेचकर खादी को लोकप्रिय बनाया। मूल्य की कमी को उन्होंने अपना खेत बेचकर पूरा किया। क्रांतिकारी आंदोलन। देश में ऐसे विचारधारा वाले नौजवान भी थे जो अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उत्साही थे। वे सीधी कार्यवाही पर विश्वास करते थे। ऐसे उत्साही समर्पित नवयुवकों के संगठन को क्रांतिकारी दल के नाम से जाना जाता था। इस क्रांतिकारी संगठन के अधिकांश सदस्य जोशीले नौजवान थे। वे गोला बारूद बनाने एवं हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेते थे एवं अंग्रेजों के विरुद्ध सक्रिय संघर्ष के पक्षधर थे। वे महाराष्ट्र में अभिनव भारत एवं बंगाल में अनुशीलन समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय थे। वे पंजाब और उत्तर भारत में भी अधिक क्रियाशील थे। इनके अलावा विदेशों में भी श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम भीखा जी कामा, एम बरकत उल्लाह, बीबीएस अय्यर, रास बिहारी बोस, पीडी सावरकर और ओबेदुल्ला आदि क्रांतिकारी प्रमुख थे। ये क्रांतिकारी अपने उद्देश्य में आंशिक रूप से सफल भी हुए। इनके आत्मबलिदान ने भारतीयों के हृदय में देश प्रेम और विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष की भावना का प्रचार प्रसार किया। ये क्रांतिकारी देश के लिए प्रेरणा स्रोत बने। अंग्रेजों की भारतीयों में फूट डालो नीति के कारण ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां की अध्यक्षता में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सत्ता के प्रति निष्ठा प्रकट की थी। बाद में उन्हें भी अंग्रेजों की दोहरी नीति समझ में आ गई। अंततः लखनऊ में सन 1916 की सर्वदलीय बैठक में समझौता हुआ। परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष किया। छत्तीसगढ़ में भी क्रांतिकारी संगठन संचालित हुए। इन संस्थाओं में मालिनी रीडिंग क्लब, पीपल टीचर्स एसोसिएशन, कवि समाज राजिम एवं छत्तीसगढ़ बाल समाज प्रमुख संगठन थे। इन संगठनों ने छत्तीसगढ़ के युवकों को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन की प्रेरणा दी तथा छत्तीसगढ़ की जनता में राष्ट्रीय जागृति के मार्ग को प्रशस्त किया। उनका उद्देश्य समाज सुधार के साथ ही राष्ट्रीय भावना को विकसित करना था। नरम दल और गरम दल का प्रभाव रायपुर के प्रांतीय अधिवेशन पर भी पड़ा। यहाँ वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत से कार्यवाही की शुरुआत करने के सुझाव पर वैचारिक मतभेद हुए। दादा साहेब खापरडे एवं उनके साथियों ने तात्यापारा रायपुर के हनुमान मंदिर के सामने वंदे मातरम का सामूहिक नारा लगाया तथा जनसभा में स्वदेशी के महत्व को समझाया। सन 1911 में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। यूरोप में कुछ ऐसे भारतीय युवा छात्र थे जो कि भारत की आज़ादी के लिए सशस्त्र क्रांति एवं संघर्ष का विचार रखते थे। ऐसे ही विचार वाले युवाओं का एक दल गदर पार्टी के नाम से 1913 में उत्तर अमेरिका में सक्रिय था, जिसके नेता लाला हरदयाल थे। इनकी सक्रियता के कारण ही इन्हें देश से निष्कासित कर दिया गया था। कुछ समय बाद गदर पार्टी के कुछ सदस्य भारत में लौट आए। प्रथम विश्व युद्ध से लौटे सिपाहियों के बीच सशस्त्र क्रांति के तरीकों का प्रचार किया। इसी बीच यूरोप के साम्राज्यवादी देशों के दो विरोधी गुटों के बीच शत्रुता के कारण सन 1914 में एक बड़ा युद्ध हुआ, जो सन 1918 तक चला। इसे ही प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय साधनों और सिपाहियों का युद्ध में उपयोग किया। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव एवं ब्रिटिश सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण से दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे। इस समय ब्रिटिश सरकार ने नागरिकों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए, अतः भारतीयों में असंतोष बढ़ने लगा था। ऐसी स्थिति को देखते हुए आयरलैंड से भारत आई महिला डॉक्टर श्रीमती एनी विसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। होम रूल अर्थात स्वशासन, जिसका अर्थ है अपने शासन को स्वयं चलाना। इससे देश के आंतरिक शासन को संचालित करने का अधिकार भारतीयों को प्राप्त हो जाता। इसे ही स्वराज्य भी कहा जाता है। डॉक्टर एनी विसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने संपूर्ण देश में सघन दौरा किया एवं स्वराज्य की मांग को लोगों तक पहुंचाया। भारत में बढ़ते असंतोष, होम रूल आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता और यूरोप की युद्धजन्य परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कुछ महत्वहीन विभाग सौंप दिए थे। इसी नियम के अंतर्गत मध्य प्रांत के विधानसभा परिषद का प्रथम चुनाव हुआ। इसमें छत्तीसगढ़ से बहुत से नेता चुनकर गए, जिनमें प्रमुख थे ए राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा एवं बाजीराव कृदत्त आदि।
अरबा रेडियो.com की प्रस्तुति भारतीय इतिहास।